भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता, जिसकी चर्चा हम कई हमारे बुधवारों से कर रहे हैं, जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन, और हम इन 12 मुद्दों में से जो आखिरी मुद्दा है, हाउ मच डू वी वॉन्ट नेम फेम रिकग्निशन एंड अटेंशन फॉर आर सेल्व, हाउ मच डू वी वॉन्ट फॉर कृष्णा। तो अहंकार, अभिमान, प्रतिष्ठा, एक सुभाषित में कहा गया है, प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी। प्रतिष्ठा एक ऐसी नारी है जो सदा कुंवारी रहती है। जो इससे विवाह करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा उनको चाहती नहीं, और जिनको प्रतिष्ठा चाहती है वो उनसे विवाह नहीं करना चाहते। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेप्थ है इस सुभाषित। प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, जो भागते रहते हैं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहती कभी भी उनके साथ रहना सही मायने में। और प्रतिष्ठा जिनके साथ रहना चाहती है या अपना सर्वस्व जिनको देना चाहती है, जैसे शुद्ध भक्त भगवान के, वो कभी उस प्रतिष्ठा से विवाह नहीं करना चाहते। तो ईगो, ओपिनियन वी हैव अबाउट आर सेल्व, ओपिनियन वी हैव अबाउट अदर्स इन आर कनेक्शन, डूअर कंट्रोलर ओनर एंजॉयर, अलग अलग रूपों से हमारे जीवन में ये जो अहंकार है ये कार्यरत रहता है। अब हमने कॉम्बिनेशन इस अहंकार का हमारे अनर्थों के साथ पिछले सिटिंग में लिया था, उदाहरण के साथ ईगो प्लस इग्नोरेंस कालिया और ब्रह्मा जी का उदाहरण, ईगो प्लस ग्रीड दुर्योधन, ईगो प्लस एनवी शिशुपाल, प्लस प्राइड इंद्र, लस्ट रावण, एंगर हिरण्यकशिपु, ईगो प्लस फियर कंस। हाउ डू वी रिएक्ट, हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं अहंकार के साथ साथ, एक तो हमारा अंदर का कंटेंट क्या है, हम किससे बने हैं, रॉ मटेरियल क्या है अंदर का, दैट डिसाइड्स हाउ वी रिएक्ट, व्हाट इज आउटसाइड सिचुएशन। तो हमने उदाहरण लिया था, इनसाइड का उदाहरण हमने लिया था कि आम का फल है, उसको यदि प्रामाणिक आम का फल है तो उसे आप जितना भी निचोड़ोगे उसमें से क्या बाहर निकलेगा? आम का रस। तो जिंदगी की चुनौतियां वो निचोड़ती हैं हमें। इस संसार में, इस कलयुग में जब भी हम निचोड़े जाएं, तो हमारे अंदर से वही निकलेगा जिससे हम बने हैं। तो आम को यदि पूछा जाए कि भाई क्या आपको निचोड़ना अच्छा है या बुरा है, आम क्या कहेगा? यदि आम चाहता है कि उसके अंदर का जो सब्सटेंस है वो दूसरों की सेवा में वो लगा सके, तो आम यही कहेगा कि हां मुझे निचोड़ो, है ना? अपनी सेवा देता है, अपने आप को उस चुनौतियों से गुजरते हुए वो दूसरों को अपनी सेवा देता है वहां। उसी प्रकार से एक प्रामाणिक भक्त, बोनाफाइड डिवोटी वेलकम्स चैलेंजेस सो दैट द रियल सब्सटेंस कम्स आउट। फिर हमने आउटसाइड सिचुएशन में ये थोड़े से टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स पिछले बार इसकी चर्चा की थी, दिस स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971 का, द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट 1963 येल यूनिवर्सिटी का, आपको यदि याद होगा तो। और फिर हमारा अंतिम स्लाइड ये था, आउटसाइड अफेक्टिंग योर इनसाइड। वही आम का फल पकता है, बाहरी वातावरण पर निर्भर वो रहता है। तो बाहरी वातावरण, यदि सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ जाए तो वो सूख जाएगा या फिर सड़ जाएगा। यदि सूर्य की रोशनी बिल्कुल ना, तो फिर सूख जाएगा, वो पकेगा नहीं ठीक रूप से। तो इसलिए सही वातावरण, यहां पर अब हम आंतरिक और बाह्य ये दोनों के कॉम्बिनेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो दो प्रकार के एक्शन, एक है हम रिएक्ट करते हैं, अंग्रेजी के ये दो शब्द हैं, वन इज टू रिएक्ट, अदर इज टू रिस्पॉन्ड। बहुत इसमें विशेष अंतर है दोनों में, कि रिएक्ट करना और फिर रिस्पॉन्ड करना। तो रिएक्ट का अर्थ है व्हेन इनसाइड कंटेंट इज वीकर देन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, वी रिएक्ट। हमारे अंदर का जो तत्व है वो यदि शक्तिशाली नहीं है बाह्य वातावरण की तुलना में, तो हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि हम मनुष्य जब किसी संबंध में स्थापित होते हैं, या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ आदान प्रदान करता है, तो नोकझोंक होती है, अनबन होती है, ये सारी चीजें जो होती हैं परिवारों में, हाँ, कलह कब पैदा होता है? When family members rather than responding they start reacting। तो यहां पर महत्वपूर्ण बात समझना यह है कि जो बाहरी वातावरण है, बाहरी वातावरण हम बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। ये भौतिक संसार जिस प्रकार से बनाया हुआ है, हम कितना भी कोशिश कर लें इसको कृत्रिम रूप से बदलने का, हम बहुत ज्यादा इसमें बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए हर समय ये शिक्षा दी जाती है कि यदि आपको बदलाव लाना है तो शुरुआत कहां से करनी है? अंदर से। जैसे श्रील प्रभुपाद के साथ ये उनकी कथा हुई जुहू में, हमारा जो राधा रास बिहारी इस्कॉन मंदिर जुहू में है बंबई में, तो प्रभुपाद ने वहां पर चूहों को देखा, प्रिमाइसेस में कुछ चूहे दिखे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कह दिया, डिवोटीज आर नॉट चैंटिंग प्रॉपरली। डिवोटीज को इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया कि हमारे चैंटिंग से चूहों का मंदिर में आना जाना क्या कनेक्शन है। प्रभुपाद ने फिर समझाया, इफ यू चैंट प्रॉपरली योर हार्ट विल बी प्योरिफाइड। द मोर योर हार्ट विल बी प्योरिफाइड, द मोर यू विल कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। द मोर यू विल कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, द लेस रैट्स एंड दीज एनिमल्स विल कम। तो यहां पर प्रभुपाद ने आउटसाइड सिचुएशन का कनेक्शन इनसाइड सिचुएशन से किया। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बोलते हैं, है कि नहीं। इसलिए जब कोई सत्वगुण में अध्यात्म का पालन करने से जब कोई सत्वगुण में स्थित होने लगता है, तो ये सारे जो लक्षण है, स्वच्छता या शौच शुचि, ये सारे जो लक्षण हैं, ये लक्षण उसके आंतरिक चेतना का एक प्रदर्शन है या प्रकटीकरण है उसका। तो इसलिए जब भी हम किसी सिचुएशन में इंपल्सिवली रिएक्ट करते जाते हैं, तो क्या समझ लेना चाहिए कि हमारा जो इनसाइड कंटेंट है वो कमजोर है। बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण डामाडोल है, ये समझ लेना चाहिए। और ठीक इसका विपरीत हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। ये काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट इसका किया गया, और एक्सपेरिमेंट में इस वीडियो का शीर्षक है द ब्लैक बटन। तो एक व्यक्ति को एक जैसे कि लॉटरी लग जाती है, तो उसे बताया गया कि भाई बहुत से अनगिनत सैकड़ों मनुष्यों में से तुमको चुना आज के दिन $10 million तुम्हें इनाम देने के लिए तुम्हें चुना गया, परंतु इस $10 million को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक ब्लैक बटन दबाना होगा। और वो ब्लैक बटन क्या है? वो ब्लैक बटन ये है कि जैसे ही तुम उस ब्लैक बटन को दबाओगे, तो इस पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, उनमें से कहीं कोई एक मनुष्य तुरंत मर जाएगा तुम्हारे ब्लैक बटन को दबाने के वजह से। सम ह्यूमन बीइंग समवेयर विल डाई, वन ह्यूमन बीइंग विल डाई बिकॉज ऑफ प्रेसिंग दिस ब्लैक बटन बाय यू। तो ये क्वेश्चन इस शख्स को पूछा गया, विल यू प्रेस दैट ब्लैक बटन, इन रिटर्न यू विल गेट $10 million, नॉट रुपीज, $10 million। तो यहां पर क्या हो रहा है? इनसाइड कंटेंट क्या है उसका, आउटसाइड एनवायरमेंट क्या है? अभी आउटसाइड एनवायरमेंट क्या क्रिएट हो गया है? कि एक प्रलोभन उसके सामने, और उसका इनसाइड कंटेंट। तो क्योंकि ये वीडियो अंग्रेजी में है, इसलिए मैंने आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर सुना दिया। अब आप देखिए क्या होता है, देखना चाहेंगे? हरी बोल, मैं भी देखना चाहूंगा।
Mr. Roberts.
Who the hell are you?
pertinent question, Mr. Roberts, which we will address in due course. But for now, let us focus on the task at hand.
What are you talking about? What am I doing here?
You are here to make a choice, Mr. Roberts. That is all.
I'm sorry. I don't know who you are or where I am.
I was on my way to work, and...
Then now you are here. Your choice is a simple one. If you make the right one, well, you will leave here with more than you could possibly imagine.
What choice? What are you talking about?
Mr. Roberts, in front of you is a button. Should you choose to push that button, someone, somewhere in this world, will die.
What kind of a sick joke is this?
You didn't let me finish, Mr. Roberts. If you choose to push that button, I will give you $10 million inside this briefcase.
This is ridiculous. I'm leaving.
You'll find the door is locked.
You do not know who you are dealing with.
Geoffrey Roberts of 14 Brennan Court. Trouble sleeping, job wavering, debts mounting.
Who the hell do you think you are?
A powerful man, Mr. Roberts. A man who can change your life. For the small cost of someone else's.
My God.
Oh, he's not yours, Mr. Roberts.
This can't be real.
I assure you, it's very real.
Prove it.
Well, let's take a look then, shall we? $10 million, Mr. Roberts. All legal tenders. Just think what that sort of money can achieve.
Well, what happens if I don't push it?
Well then, I give you the key to the door. And you never see me or the $10 million again.
How do I know pushing that button won't just kill me?
Well, it could. But the odds are 6 billion to 1.
6 billion, huh? That is a lot of people. And people do die all the time, right?
Precisely.
I mean, how many people have died in car accidents this year?
Car accidents? 14,764? Huh? 65? 60. We digress. You were saying about accidents. They happen all the time.
Yeah, you know, wrong place, wrong time, and thank you, time is up.
Eventually, Mr. Roberts, everyone's time is up.
All right. If I push that button, how would they die?
It'll be an accident of some sort.
How can I possibly trust you?
I'm trying to help you.
Yeah, come on, just tell me, what is this really about? What's in it for you?
Well, nothing directly. You see, my purpose is to try to create a world devoid of weakness, kindness, selflessness, mercy. These are all euphemisms for weakness. I hold up the animal world, Mr. Roberts. The beasts of the field show no...
Aksar, जब कोई अंदर से कमजोर होता है तो उसके जो चॉइसेस हैं इसी प्रकार से होते हैं। यदि आपको समझ में आया होगा, उसने वो जो ब्लैक बटन दबाया ये नहीं जानते हुए कि इस पूरी पृथ्वी पर जो 6 बिलियन मनुष्य है उसमें से वो भी एक है। तो कंडीशन क्या था? One amongst the 6 billion will be killed, and that was him. तो हम जो choices हमारी जिंदगी में करते हैं, हमारे सामने देखो by default भगवान ने अच्छा बुरा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है? इसमें चयन करने की शक्ति दी है. मटेरियल एनर्जी हैज गिवन अस द पावर टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. और उसके साथ साथ एनवायरमेंट भी क्रिएट कर मटेरियल एनर्जी देती। जैसे कि ये प्रश्न मुझे कुछ समय पहले पूछा गया था कि भगवान ये संसार को इतना दुखमय जानबूझ के बनाते हैं, क्या उनको मजा आता है? तो मैंने एक उदाहरण से समझाया कि भगवान ने अंगूर बनाए, प्रकृति की देन है, हमने तो नहीं बनाए अंगूर, हमने क्या किया उन अंगूरों का, मनुष्यों ने क्या किया नासिक में जानते हैं। भगवान के बनाए हुए अंगूर को सड़ाकर दारू बनाए, तो हमारे क्रेडिट में क्या हमने पाया, दारू बनाना है कि नहीं? तो भगवान दवा बनाते हैं, हम दारू बनाते हैं, और हमारे दारू की वजह से फिर भगवान को और दवा बनानी पड़ती है। तो अब देखिए इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमारा जो डिस्कशन चल रहा है ईगो प्लस अनर्थ मिक्स अवर इनसाइड कंटेंट, अवर इनसाइड कंटेंट गेट्स अफेक्टेड बाय आउटसाइड एनवायरनमेंट एज वेल। इफ दिस इज वीक आउटसाइड एनवायरनमेंट विल अफेक्ट, इफ दिस इज स्ट्रांग आउटसाइड एनवायरनमेंट वी विल अफेक्ट द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो अब हम हमारे मनुष्य जीवन में जो कुछ करते हैं ये समझना चाहिए कि उसका एक रिएक्शन चालू हो जाता है। चाहे हम मान लो कि कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे कई बार ये आर्गुमेंट दिया जाता है जो मांसाहार करते हैं वो एक आर्गुमेंट देते हैं कि मैंने तो उस जानवर को नहीं मारा, तो फिर मुझे रिएक्शन क्यों मिलना चाहिए? जिस कसाई ने उस जानवर को मारा उसे रिएक्शन मिलना चाहिए, मैं तो वो मर चुका था उसके बाद में फिर अभी खा लिया, वैसे भी वो फेंका जाने वाला था। अच्छा कई बार देखो लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं कि वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने उसको खरीद के खा लिया, फिर उसकी उसका भी ऑक्यूपेशन उसके बारे में भी सोचना चाहिए ना, कसाई जो है उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा, बेचारे उसके भी बाल बच्चे हैं, जैसे जितने मांसाहारी हैं उन्होंने इन सब का ठेका ले रखा है उनके। तो कई बार है ये आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि ना मैंने तो उसको काट कर नहीं खाया, लेकिन क्योंकि तुमने चुना कि तुम वो चीज खाओगे इसलिए फिर किसी ने उसकी दुकान खोली है कि नहीं। क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई पहले नहीं होता, पहले डिमांड होता है और डिमांड के अनुसार फिर सप्लाई क्रिएट किया जाता है। हम सब सीख रखे हैं ये, हमारे स्कूल कॉलेजों में हमने ये सब सीख रखा है, परंतु जब ऐसे मुद्दों को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं तो फिर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। यारे भाई, तो होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति गलत चीज चुनता है, तो उस गलत चीज को वो चुना और फिर उसको कार्य में लाया तो उसका चेन रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा केवल एक व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है केवल उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक व्यक्ति किन किन से संबंधित है वो सारे उसके चपेट में धीरे धीरे आते हैं। यहां तक कि हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जो मांसाहारी है उसमें कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो उस कसाई को ऑर्डर देता है मारने के लिए वो इन्वॉल्व है, कसाई जो मारता है वो इन्वॉल्व है, फिर उसका जो ट्रांसपोर्ट करता है वो इन्वॉल्व है, इक्वली है, सब इक्वली इन्वॉल्व हैं उस कर्म में, फिर जो उसको पकाता है वो इन्वॉल्व है, जो उसको सर्व करता है वो इन्वॉल्व है, जो उसको खाता है वो इन्वॉल्व है. ये सारे कुछ 6 पार्टीज इक्वली इन्वॉल्व हैं उस रिएक्शन के भागीदारी बनने में. सोचिए कितना प्रिसाइज है लॉ ऑफ कर्म. तो चेन रिएक्शन क्या है? जैसे मैं अभी पिछले महीने जब यूके में था तो वहां पर मैंने देखा कि एक घर में प्रोग्राम शुरू होने वाला था. तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले छोटा सा बच्चा घर का, उसने पेशाब कर दिया. जहां पर मेन सभी आके बैठने वाले थे वहां पर उसने पेशाब कर दिया. तो अभी जो सब लोग आना शुरू हुए तो जो प्रभु जी, उन्होंने क्या किया, अपने धोती से पहुंच दिया उसको, क्योंकि अभी सभी लोग आने वाले हैं, सब ऑलरेडी एंट्री कर दिए. तो अभी वो अंदर जाके पहुंचा लाए, कोई बैठ जाए वहां पे ठीक नहीं लगता, तो उन्होंने अपने धोती से पहुंच दिया. तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि उन्होंने अपनी धोती से पहुंच दिया और फिर वो भी प्रोग्राम में बैठ गए वही धोती पहने हुए. तो मैंने वो एग्जाम्पल लिया, फिर मैंने वो एग्जाम्पल उस क्लास में कहा. मतलब ये नहीं कहा कि इन्होंने किया, मैंने कहा कि ऐसे, तो बेचारे प्रभु जी समझ गए. मैंने कहा, उनका नाम नहीं लिया मैंने. तो मैंने कहा कि देखो, उन्होंने वहां से फर्श को साफ कर दिया, फर्श पर अब उस बच्चे का पेशाब नहीं है, परंतु ट्रांसफर कहां हो गया, उनकी धोती में ना. अब हो सकता है कि फर्श पर उसकी बदबू ना हो, परंतु बदबू ट्रांसफर कहां हो गई, धोती में. फिर उस धोती को निकालकर वॉशिंग मशीन में अगर वो डालेंगे दूसरे दिन बाकी कपड़ों के साथ, तो क्या हो रहा है, इसको कहते हैं चेन रिएक्शन. कि यहां से फर्श पर से पेशाब की बदबू ट्रांसफर हुई उनके धोती में. उसी प्रकार से हमको लगता है कि चलो यहां पर बस सब कुछ ठीक कर दूं, मैं हो गया, मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं. नहीं, हमें यह समझना चाहिए कि एक हमारा एक्शन, उसका रिएक्शन, अगर शास्त्र अनुसार वो एक्शन नहीं है तो उसका रिएक्शन कहां का. पॉजिटिवली भी ये भी सच लॉजिक, ये जो लॉजिक है पॉजिटिवली भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. तो हम अभी देखेंगे कि चेन रिएक्शन, एक आपको चेन रिएक्शन का एक वीडियो दिखाएंगे. इट ऑल कम्स बैक टू यू, रेंदो लाइट बंद करने की जरूरत. इट ऑल कम्स बैक टू यू. लॉ ऑफ कर्म क्या है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. हमको थोड़ा ये लग रहा होगा ऑन द लाइटर साइड ये वीडियो बना है, लेकिन हम सब के साथ हो क्या रहा है, व्हाट वी आर गिविंग इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, समडे सम टाइम इट कम्स बैक टू अस, इट हैज टू कम बैक टू अस. सो इफ यू आर गिविंग आउट समथिंग पॉजिटिव, one day, someday, sometime, it is going to come back to you in a positive way. And if it is negative, just like यहाँ पे आपने देखा कि कैसे एक के बाद उसका, मतलब उसको जो reaction मिलना था, उस reaction को देने के लिए वो जो ट्रांसफर होता गया एक के बाद एक के बाद एक। तो अब हम देखेंगे कि पॉजिटिवली आप लोगों के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी और लाने के लिए कि पॉजिटिवली कैसे ये सेम लॉजिक या लॉ अप्लाई होता है। द चेन रिएक्शन, इट ऑल कम्स बैक टू यू।
$68. I'm sorry. Can I return the cake, please?
Sure, yes.
I want the cake, please. I won't ask for anything else.
Next time, okay, where we can afford it.
Last time you said that.
The cake is not tasty. Let's buy something else, okay?
Do you want that?
Yes.
I'll take it there.
Okay.
Hey, hey, hey. Hello. This is for you.
I know we cannot accept it.
Would you please?
There's no reason for you to buy the cake for us.
Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake.
Mommy, I want this one.
By the counter, we didn't have enough.
Can we get something else?
It's my birthday today. Can I choose my own cake, please?
I'm sorry.
Then, there's this man. I've never met him before.
Here, have the cake. Happy birthday.
I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I have never forgotten him.
Thank you.
No, thank you.
Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money.
Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it?
Grandma! I chose this cake for your birthday.
Wow, this is my favorite. Thank you.
Let's go and put some candles.
Oh, careful. You shouldn't have spent the money.
Actually, a kind man paid for it.
He gave me this note.
Please write down your address. I'll bring the money back to you later.
Simple act of caring creates an endless ripple.
चेन रिएक्शन कहीं पहुंचेगा, वाइब्रेशंस अच्छे पहुंचेंगे, रिपल इफेक्ट। इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। एक जब मैं दिल्ली में था तो तो एक किस्सा हुआ हमारे साथ. हम लोग हमारे एयरफोर्स के लॉन टेनिस टीम के मेंबर्स थे और अब हमारी एयरफोर्स की टीम चाहती थी कि हम नेशनल लेवल पर खेलें. तो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जो नेशनल कोच वो होना आवश्यक था हमारे लिए. तो वो एक कंडीशन था कि अगर आपको नेशनल लेवल पर या आपको नेशनल टीम में सेलेक्ट होना है तो आपका कोच भी नेशनल लेवल का कोच होना चाहिए. तो वहां पर दिल्ली में जो DLTA दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन का वहां का जो मेन कोच जो नेशनल लेवल का कोच था तो हम नहीं उसको पकड़ पा रहे थे. उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसका अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल पा रहा था. वो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ 18-20 साल पहले की बात जब सेलफोन्स वगैरह नहीं थे. तो हुआ क्या कि हम लोग कई महीनों से ये जो कोच है इसको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है. तो हमारा डिले होते जा रहा था और फिर जो टूर्नामेंट्स हैं वो पास आते जा रहे थे. तो मुझे याद है कि एक टूर्नामेंट खेलने के लिए मैं DLTA जो कोर्ट्स हैं वहां जाने वाला था. तो मैं बस स्टॉप पर खड़ा था तो बस नहीं आई मेरी काफी समय से. पूरा मैं वो जो एक टेनिस प्लेयर का जो गियर होता है वो डाले हुआ था. तो एक कोई दंपति वहां पर हरियाणा के वहां पर बैठे हुए थे. तो जो महिला वो मेरे पास आई कुछ भीख मांगते हुए कि हम लोग यहाँ पर आए एक हफ्ते पहले, हमारा सब कुछ लुट गया, आप अगर हमको वापस हमारे गांव जाने की रकम दे सकते हैं बस की. तो पता नहीं मुझे लगा कि जेन्युइन लग रहे हैं ये लोग. तो मेरे पर्स में जितने पैसे थे कुछ मेरे ख्याल से 2-3 हजार होंगे वो सारे मैंने दे दिए. तो उनको तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, वो तो केवल कुछ 50-60 रुपए अपेक्षा कर रहे थे. यहां पर मैंने मेरा पूरा पर्स खाली कर दिया, दे दिया. पता नहीं क्या मन में आया. अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बस के टिकट लेने की भी. तो मैंने देखा अरे पैसे ही नहीं अभी तो बिल्कुल. तो मैं कहा चलो चल कर जाता हूं मैं. तो मैं चलते हुए DLTA की ओर निकल पड़ा. पीछे से एक कार हॉर्न उस कार ने मारा, क्योंकि मेरा पीछे वो टेनिस रैकेट वगैरह सब था. तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप DLTA जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ. वो व्यक्ति कौन था? वही कोच जिसको हम इतने महीने से ढूंढ रहे थे, वो वही नेशनल कोच. तो मैं वो सोच रहा था कि यदि मैं बस से गया होता या 10 रुपए भी रख लिए होते बस के टिकट के लिए तो ये मिलता नहीं. इसको कहते हैं चेन रिएक्शन. और फिर वो कोच हमारा टीम का कोच बना. उसको जब मैंने रिक्वेस्ट किया ऐसे ऐसे, उसको मैंने पूरी स्टोरी बताई कि मैं चल के क्यों जा रहा था. तो फिर वो हमारा टीम का कोच बना और उसके बाद फिर हमारी टीम नेशनल लेवल तक पहुंच पाई. तो हर एक पहलू में, चाहे वो हमारे जीवन के कुछ ऐसे किस्से हों जिनको हम याद नहीं करना चाहते परंतु हमसे गलतियां हो गई हो या जानबूझ के हमने कुछ किया हो, सब का रिएक्शन हर समय इस वातावरण में मौजूद रहता है. आवर एक्शंस हैव रिएक्शंस परमिएटिंग दिस एटमॉस्फियर ऑल ओवर. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन इट विल कम बैक टू अस. तो अब रिस्पॉन्ड, यू रिमेंबर रिएक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन अवर इनसाइड इज वीकर देन द आउटसाइड वी रिएक्ट. ऑपोजिट ऑफ दिस इज रिस्पॉन्ड व्हेन इनसाइड कंटेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द आउटसाइड एनवायरमेंट देन वी रिस्पॉन्ड. प्रतिक्रिया तो होनी है. हमको कोई कुछ कहता है, हमारे साथ बुरा सलूक होता है, अच्छा सलूक होता है, इन व्हाटएवर केस प्रतिक्रिया हमसे होनी है. हम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है कि हमारे हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, परंतु हमारा अंदर का कंटेंट क्या है वो डिसाइड करेगा कि वो प्रतिक्रिया रिएक्टिव होगी या रिस्पॉन्सिव होगी। तो इसलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों से हम लेना चाहेंगे। सबसे पहला ये जो मुद्दा है, when outside is stronger than inside, which means examples of reactive people. Obviously, पहला example हर समय अजामिल का ही रहता है। अजामिल जो कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और हर दिन वो सत्वगुण का जीवन जीता हुआ, परंतु फिर भी जब उसने वो एक दृश्य देखा, एक वैश्या और एक शूद्र संभोग करते हुए, तो जो बाहर का एनवायरमेंट या जो भी सिचुएशन को एनकाउंटर किया, वो सिचुएशन इसके आंतरिक जो सत्वगुण की शक्ति है उससे ज्यादा शक्तिशाली। तो हुआ क्या, उसके वजह से फिर अजामिल का पतन हुआ और अजामिल ने फिर अपने अंतिम दिनों में याद किया पश्चाताप करते हुए कि यदि उस क्षण वो रिएक्टिव होने के बदले रिस्पॉन्सिव होता तो ये नौबत नहीं आती। फिर उदाहरण है सौभरी मुनि का। सौभरी मुनि जमुना के अंदर तपस्या कर रहे हैं, दो मछलियों को देखा उन्होंने संभोग करते हुए। अजामिल ने तो कम से कम इंसानों को देखा, सौभरी मुनि तो मछलियों को देखा। और उस एनवायरमेंट में सोचिए कि पानी के, वो भी जमुना, कोई साधारण पानी नहीं, जमुना तीर्थ अंदर वो तपस्या कर रहे हैं और वहां पर उनके अंदर का जो कंटेंट वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि बाहर का एनवायरमेंट उनको अफेक्ट कर गया। तीसरा फाइनल उदाहरण विश्वामित्र मुनि का, जो इतने 60,000 वर्षों तक जो तपस्या करने वाले, हाँ, और इतना सब कुछ उन्होंने हासिल कर लिया। मेनका, सोचिए मेनका की शक्ति। बताया गया है कि मेनका ने केवल अपने नूपुर की आवाज से विश्वामित्र मुनि के इनसाइड कंटेंट को हिला दिया। नूपुर की आवाज, अभी तक आंख खोली भी नहीं विश्वामित्र मुनि ने, उससे पहले। इसलिए राधानाथ महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, इवन इफ देर इज अ बिग योगी, तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि बिग योगीज दे आर लाइक बटर and these apsaras are like fire. So when butter and fire come together, what will happen? Butter has to melt and go towards the fire. So unhone kaha, even if the butter is kept in deep freeze for 60,000 years, how much time the fire will take to melt? 60,000 year old butter in deep freeze. So Vishwamitra Muni, so Maharaj ye story sunate hue kahe, so Vishwamitra Muni's butter was, it was written, 60,000 year old butter. Therefore we should give it to butter thief. Huh? अब when inside is stronger than outside, examples for that, अर्जुन जब इंद्रलोक गए वहां पर वेपन्स इकट्ठा करने, तो ये हम घटना जानते हैं कि उर्वशी की ओर अर्जुन ध्यान से देख रहे थे और अर्जुन देख रहे थे, अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था कि अरे ये जो मेरे पूर्वज हैं उनकी ये काउंटर पार्ट रह चुकी है, कॉन्सर्ट रह चुकी है। तो अर्जुन उस प्रकार से देख रहे थे कि ये भी एक मेरे वंशज में रह चुकी है उर्वशी, जिसके बारे में इतना सुना था, आज देखने मिला। तो इंद्रदेव को लगा कि अर्जुन जो देख रहे हैं उर्वशी को, तो अर्जुन शायद इंटरेस्टेड हैं। अरे भाई, उर्वशी में कौन नहीं इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वो खुद इतना इंटरेस्टेड थे। तो इंद्रदेव को ये लगा कि जिसमें मैं इतना इंटरेस्ट ले रहा हूं, उसमें यदि अर्जुन, अर्जुन कौन है, अर्जुन इंद्र के बेटे, कि मेरा बेटा उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा है। अभी वो हेवेंस में वो सब कैलकुलेशंस अलग ही होते हैं वहां के, इसलिए बहुत लोगों को वहां जाना अच्छा लगता है। तो हालांकि अर्जुन वो एक अपने सशरीर गए थे, मनुष्य शरीर में वहां पर गए थे, तो वहां पर बहुत बड़ा न्यूज था ये, क्योंकि एक तो अर्जुन सबसे अर्थी प्लैनेट के सबसे बड़े धनुर्धर और यंग स्मार्ट हैंडसम, ये वो सब इतना उनका वहां पर फेम पहुंच चुका था पहले ही। तो अर्जुन वहां पर सशरीर पहुंचना, ये एक रूल में एक्सेप्शन किया था, कोई वहां पर ऐसे पार्थिव शरीर लेकर नहीं जा सकता था। अर्जुन गए और उर्वशी, यहां पर उल्टा था, उर्वशी वॉज इंटरेस्टेड इन अर्जुन। अरे बाप से अच्छा तो बेटा है। तो उर्वशी जब वो नृत्य करते हुए, उर्वशी ने भी साइड लॉन्ग ग्लैंस से देखा कि अर्जुन उनकी ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, हाँ, एक टक नजर से। तो उर्वशी, उर्वशी को भी लगा कि हाँ भाई, मैं हूं कौन, नंबर वन। मतलब एक बार महाराज लेक्चर में कह रहे थे कि उर्वशी की सुंदरता क्या, इस संसार में जितने भी जो मिस यूनिवर्स है उनको एक साथ ले आओ, दे विल लुक लाइक कॉकरोचेस। महाराज के एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किया, ऑल द मिस यूनिवर्स विल लुक लाइक कॉकरोचेस इन फ्रंट ऑफ उर्वशी, बिकॉज शी वॉज डायरेक्टली बॉर्न फ्रॉम नारायण। तो अर्जुन के साथ जब आमना सामना हुआ, वो भी एकांत में, अब अर्जुन नहीं जानते थे, इंद्रदेव ने अरेंज किया कि भाई एकांत में अर्जुन और उर्वशी। तो होता है ना, फिल्मों में दिखाते हैं जब सब रिश्तेदार यहां वहां होते हैं, तो फिर वो रोमांटिक चीजें नहीं चलती, एकांत में, फिर एकांत। एक बार एक ग्रामर टीचर, इंग्लिश ग्रामर टीचर, वो ग्रामर सिखा रही थी, तो होता है ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में उसने एक स्टेटमेंट कहा, सुनसान जगहों में बच्चों के साथ कई हादसे हो जाते। ये एक्टिव वॉइस है, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करो बच्चों। तो एक बच्चा हाथ ऊपर करता है, मैडम मैं करता हूं। तो उसने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, एक्टिव वॉइस क्या है, सुनसान जगहों में बच्चों के साथ कई हादसे हो जाते, तो इसने पैसिव में कन्वर्ट किया, सुनसान जगहों में कई हादसों के वजह से बच्चे हो जाते हैं। तो अभी कोई आप वापस एक्टिव में आ जाइए, पैसे बहुत से मत रहिए। तो अभी साधारणतः और कोई यदि होता अर्जुन के जगह पर, तो सुनसान जगह में उर्वशी के साथ हादसा हो जाता, परंतु अर्जुन उर्वशी को देखकर जय माता दी माता जी बुलाया। अब देखो अर्जुन के अंदर का कंटेंट कितना स्ट्रांग हुआ होगा कि उर्वशी जैसी अप्सरा, उर्वशी जैसी अप्सरा और वो भी स्वयं वो मिलना चाह रही थी अर्जुन से, और अर्जुन ने सामने से कह दिया दंडवत प्रणाम। तो यहां पर रिस्पॉन्सिव नेचर ऑफ अर्जुन इज टू बी अंडरस्टूड। दूसरा उदाहरण हनुमान जी का। लंका में हनुमान जी पहुंचते हैं रामचंद्र जी का संदेश लेकर। पहली दफा हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, सीता कैसी दिखती है पता नहीं है, ढूंढ रहे हैं सीता कहां पर। तो सबसे पहले रावण के महल में, रावण के महल में वो भी रावण के बेडरूम में। तो रात्रि के समय और हनुमान जी कौन है, ब्रह्मचारी। सोचो एक ब्रह्मचारी रावण के बेडरूम में मध्य रात्रि। तो वहां पर इतनी सारी जो रावण की पटरानियां सब लेटी हुई, सबको सबका मुआयना कर रहे, देख रहे हैं कि सीता इसमें से कोई है क्या। परंतु हनुमान जी के अंदर कोई भी विकार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर हर समय राम बसते हैं, इसलिए काम भी सामने आ जाए तो हर समय उनको राम ही दिखते हैं। आजकल स्थिति क्या है कि राम भी सामने आ जाए तो उनसे काम हम निकाल लेंगे। Why हनुमान जी was undeterred, undisturbed, although all around हनुमान जी, एक तो लंका में सब जगह environment, पूरा विषय वस्तु का environment, इंद्रिय भोग का environment, टाइम ऐसा था, जगह ऐसी, अकेले हनुमान जी, कोई वहां पर देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, परंतु हनुमान जी ने वहां पर जो उनको मिशन के लिए भेजा गया था, ही वॉज फोकस्ड ऑन हिज मिशन एंड ही वॉज अनडिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द इनसाइड कंटेंट विच वॉज स्ट्रॉन्गर देन द आउटसाइड एनवायरमेंट। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उस वैश्या को जब भेजा रामचंद्र खान ने, और एकमात्र उद्देश्य इस रामचंद्र खान का यही था कि हरिदास ठाकुर का पतन कराना। तो ये वैश्या जब पहुंचती है, और ये वैश्या का वर्णन किया गया है कि ये साक्षात माया देवी, कोई एजेंट नहीं, माया देवी हरसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ दैट प्रोस्टिट्यूट। और हरिदास ठाकुर ने वहां पर अपने अंदर के हरिनाम की शक्ति से उस वैश्या को वैष्णवी बना दिया, वैश्या को वैष्णवी बना दिया। सोचो कि कितना पावरफुल अंदर का कंटेंट हरिदास ठाकुर का। फॉरगेट अबाउट हरिदास ठाकुर गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट प्रोस्टिट्यूट, हरिदास ठाकुर ही बाय द डेंट ऑफ हिज प्योरिटी, his purity affected that prostitute so much that she became a full-time devotee. Usne shave kar liya, socho. Ye bataya gaya hai ki usne pura apna sar mundwa liya. Is had tak uske andar parivartan aaya. Aur phir Haridas Thakur jis kutiya mein rehte the, Haridas Thakur ne apni wo ek mein wo kutiya usko de di aur Haridas Thakur wahan se nikal gaya. To dekho, इसे कहते हैं डिवोटीज हूज इनसाइड कॉन्टेंट इज सो स्ट्रांग दैट इट अफेक्ट्स द आउटसाइड एनवायरमेंट। इसलिए हम उदाहरण कुछ हफ्तों पहले दिए थे. देयर इज अ थर्मोमीटर एंड देयर इज अ थर्मोस्टैट. थर्मोमीटर गेट्स अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट आउटसाइड. थर्मोस्टैट इट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर. अब हमारे जो वेद हैं उनके अंदर दो मुख्य मुद्दे, इंस्ट्रक्शंस और एनवायरमेंट, ये हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हमारे वैदिक ग्रंथों में हमें अलग अलग प्रकार के उपदेश दिए गए हैं कि हमें हमारा मनुष्य जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए. कितने अलग अलग प्रकार के वेद ग्रंथ हैं उसके अंदर, चाहे कोई किसी भी स्तर का हो मनुष्य, चाहे किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जाति का हो. फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग आवर वेदस हैज इंस्ट्रक्शंस. नॉट जस्ट दैट, आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगे परंतु अगर एनवायरमेंट नहीं है उस इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए तो वो इंस्ट्रक्शंस ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते. सो हियर इन इंस्ट्रक्शंस प्लस एनवायरमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गिव्स द डिजायर्ड इफेक्ट. तो भगवान ग्रंथ के रूप में, जैसे कि एक भगवान का जो अवतार है वो क्या है, ग्रंथ अवतार. भगवान ग्रंथ अवतार में आए, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि. तो ग्रंथ अवतार भगवान का ये जो एक अवतार है, इसके द्वारा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं कि मैंने जो ग्रंथों में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस के बलबूते पर एनवायरमेंट को चेंज करो. जिम्मेदारी एनवायरमेंट को चेंज करने की हमारे ऊपर है और उसका पूरा ब्लूप्रिंट, इस पूरे एनवायरमेंट को चेंज करने का ब्लूप्रिंट कहां दिया गया है, ग्रंथों में. तो खाली ग्रंथ पढ़कर बंद कर देना कि हां भैया 7 दिन का भागवत पाठ हो गया, हां उसके बाद में चलो अपने अपने एनवायरमेंट में जाकर अपना भौतिक जीवन जीते हैं. नहीं, भागवत पढ़ने का अर्थ क्या है, भागवत या भगवद गीता अध्ययन करने का अर्थ क्या है कि उसके अंदर जो ब्लूप्रिंट दिया है हमारे एनवायरमेंट को चेंज करने के लिए, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो उद्देश्य है इंस्ट्रक्शंस का. तो हम कुछ चर्चा करेंगे कि हम कई चीजें करते हैं या कई पहलू हैं हमारे मनुष्य जीवन के जो कि हमारे वातावरण से उसका संबंध कितना स्ट्रांग होता है. जैसे कि सोल विद इन अ बॉडी, शास्त्र कहते हैं कि जब तक शरीर का वातावरण अनुकूल है आत्मा के लिए, आत्मा शरीर के अंदर रहता है. मृत्यु है क्या, मृत्यु का अर्थ है जब शरीर अनुकूल रहना बंद कर देता है तो आत्मा उस एनवायरमेंट में अब नहीं रह पाता, इसलिए आत्मा बाहर निकलता. अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जीते जी जो लोग अपने शरीर को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या दुरुपयोग करते हैं इन इंद्रियों का, तो जो आत्मा अंदर है धीरे धीरे वो आत्मा परेशान होता रहता है क्योंकि उसका जो एनवायरमेंट है वो बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है. जैसे कि मेडिकली भी अगर देखा जाए, हु इज हेल्दी, वन हु कीप्स हिज बॉडीली एनवायरमेंट सुटेबल एंड फेवरेबल. हमको सर्दी खांसी जब कुछ लग जाता है, क्या क्या होता क्या है कि बाहर का जो एनवायरमेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम अंदर का कमजोर पड़ गया तो सर्दी खांसी लग जाती. अभी मैं जब यूके में था तो वहां पर कई हमारे भक्त जो डॉक्टर्स हैं, भारतीय हैं वो लोग, वहां पर सेटल्ड, तो एक डॉक्टर से मैं चर्चा कर रहा था, वहां पर एलर्जीज बहुत है। आप लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसी एलर्जीज है, जैसे कि नट्स की एक एलर्जीज होती है उन्हें, शेंगदाना। अभी देखो महाराष्ट्र में हम तो मतलब थोक के भाव पर शेंगदाना खाते हैं, शेंगदाना बांटते हैं। वहां पर एक कोई पैकेट के अंदर उनको हर पैकेट में, अगर उसमें वो फैक्ट्री में भी अगर शेंगदाना कहीं दूर बन रहा होगा कहीं कोने में, तो उसको लिखना पड़ता है उनके पैकेट पर कि दिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री वेयर पीनट्स वर यूज्ड। क्यों? मैंने पूछा ये इतना क्या, ये इनको ये नट्स की एलर्जी, सब जगह वो पैकेट पे लिखना वार्निंग देयर आर नट्स इनसाइड, डोंट गो नट्स, देयर आर नट्स इनसाइड। तो वो डॉक्टर मुझे कहे कि यहां पर ये जो ऐसी ऐसी एलर्जीज हैं कि नट्स की, तो वो लोग अगर जिनको एलर्जी है वो लोग खा लें, गलती से खा लें, तो उनका पूरा शरीर रैशेस से भर जाता, लाल हो जाता। कई बार तो बहुत रेयर ऐसे केसेस है जहां इट टर्न्स फेटल, शेंगदाना खाने से मर गया आदमी, ऐसे भी केसेस हुए हैं उधर, इतना एलर्जी उनके अंदर है उसका। तो मैंने पूछा कि ये तो ये भक्त कह रहे थे कि हम जो कि पले बड़े भारत में, लेकिन अभी पिछले 10-20 सालों से वहां यूके में रह रहे हैं, तो हमारे अंदर वो एलर्जीज पैदा हो गए अभी। तो मैंने कहा कैसे, आपके अंदर कैसे पैदा हो? जैसे हमारे यहां पे तो ब्रह्मचारी वो कई बार कहते हैं कि हमको शेंगदाना नहीं देते, सोचो हमारे यहां पे तो उल्टा है, मतलब महाराष्ट्र में तो हर चीज में, मतलब आप खीर भी बनाओ तो डाल सकते हैं उसके अंदर, गाजर हलवा उसमें भी डाल लो। तो ये डिवोटी कह रहे थे कि हो क्या रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पर वो सब कुछ एकदम प्योर रखते हैं, हवा पानी कहीं पे कोई धूल मिट्टी नहीं, सब कुछ एकदम सब साफ रखते हैं वो लोग। तो वो कहे कि एक रिसर्च उन्होंने की वहां पर, जो उनके मेडिकल एसोसिएशन NHS ने, तो रिसर्च में उनका ये एनालिसिस पे वो आए हैं कि वहां पर ये जो हमारे शरीर के अंदर एक बैक्टीरियाज होते हैं जो फेवरेबल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे लिए अच्छे होते हैं, मतलब हमारे अंदर की सेना है वो बैक्टीरियाज, जो कि कुछ भी गलत हमारे शरीर में चला जाए, इम्प्योरिटीज चला जाए, तो ये बैक्टीरिया उसको अटैक करते हैं। अब उन देशों में होता क्या है कि ये जो हमारी सेना है बैक्टीरिया के रूप में, ये अनएम्प्लॉयड रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग उनका फाइंडिंग है, ये अनएम्प्लॉयड रहती है क्योंकि वहां पर कोई बाहर का कोई ऐसा वायरस या गंदगी अंदर इतना जाता ही नहीं है, तो ये लोग सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये सारे बैक्टीरिया जिनको काम मिलना चाहिए था, इसलिए इंडिया में भर भर के इनको काम मिलता है, क्योंकि सब जगह कहीं पे पोल्यूशन की ना, वो धुआं यहां पर आ रहा है, कभी इसका पोल्यूशन, कभी पानी में ये, कभी ये, और कुछ नहीं तो ना, सब जगह पर इतने सारे लोग हैं उनका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं। सो बिकॉज those favorable bacteria over there are unemployed, तो वो करते क्या है, वो लोग फिर उन्हीं की बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए फिर उनको उनकी बॉडी जो है उनके अंदर ये सारे एलर्जीज पैदा हो जाते, क्योंकि अगर वो लोग एक्टिव रहे तो वो लोग ये जो एंटीबॉडीज हैं उनको अटैक करेंगे, ये लोग एक्टिव ही नहीं है तो फिर ये लोग खा पी के मोटे हो रहे हैं, सोए हुए हैं, कोई आलसी हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इस लोग वो लोग शेंगदाना भी खाते तो एलर्जी हो जाती हो। हमारे यहां पे तो शेंगदाना मिट्टी के साथ छिलके के साथ खा ले फिर भी पचा के निकाल देते हैं हम। देखिए यहां पर ये जो एनवायरमेंट की बात आ रही कि जो हमारा ये जो शरीर है उस शरीर के अंदर आत्मा कब तक रहता है, जब तक कि वो शरीर उसको अनुकूल वातावरण प्रदान कर रखे। अब ये शरीर को हम एक घर में रखते हैं, आत्मा शरीर के अंदर, शरीर घर के अंदर। तो आप देखो कि घर के अंदर जो वातावरण हम घर किस प्रकार से बनाते हैं कि घर का वातावरण कैसा होना चाहिए कि भाई खिड़कियां देखते हैं, खिड़कियां ऐसी होनी, क्रॉस वेंटिलेशन की हवा आती रहे, फिर लिविंग रूम, हालांकि लिविंग रूम में ज्यादा लिविंग होता नहीं है फिर भी उसको लिविंग रूम बोलते हैं। लिविंग रूम में वातावरण अलग होता है, बेडरूम में वातावरण अलग होता है, किचन में अलग होता है, ऐसे अलग अलग जो घर के अंदर हम वातावरण बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाते हैं ताकि वो जो शरीर या बहुत सारे शरीर उस घर के अंदर रहने वाले हैं उसके लिए वो अनुकूल रहे। तो हाउ बॉडी विद इन अ हाउस, व्हाई अ हाउस बिकम्स लिवेबल और नॉन लिवेबल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट ऑफ। जैसे एक घर में वहां पर मैंने देखा कि प्रसाद के बाद जो हाथ धोने का उनका एरिया था जहां पर सिंक लगा हुआ, तो वहां पर उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था, बोर्ड में लिखा हुआ था ऑल गेस्ट हु कम टू आवर हाउस दे गिव अस जॉय, सम बाय स्टेइंग सम बाय लिविंग। तो सही जगह पे लगा रखा था, मतलब कि भाई आप फिक्स कर लो कि हाउ यू वांट टू गिव अस जॉय, वेदर यू वांट टू गिव अस जॉय बाय स्टेइंग और बाय लिविंग। तो अगर किसी गेस्ट को बाहर निकालना है तो घर का एनवायरनमेंट अगर वो होस्ट ऐसा बना दे, दम घुटने वाला होता है ना कि दम घुटने वाला बना दे, तो आप तो अभी जा रहे होगे ना? अच्छा हाँ, बस जल्दी जाना चाहिए तो ट्रैफिक मिल जाएगा आपको, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे उसको संकेत मिलता है कि भाई अभी घर का एनवायरनमेंट ऐसे बन रहा है कि बैग पैक करो चलो भाई 9-2-11 हो यहां से। वैसे ही जो परिवार घर के अंदर रह रहे हैं, वाई फैमिली मेंबर्स कैन नॉट लिव टूगेदर, द हाउस इज द सेम, वही एसी लगा हुआ है, वही पंखे लगे हुए हैं, बट द मेंबर्स इन द हाउस मेक द हाउस लिवेबल और नॉन लिवेबल। नेक्स्ट, एजुकेशन इन अ स्कूल। अब देखो एजुकेशन तो घर पर भी कोई ले सकता है, होता है ना स्टडी रूम होता है घर के अंदर भी, अगर वो उनको सही प्रकार से टीवी के सामने बैठकर कोई अगर पढ़ रहा है, कईयों के घरों में टीवी रूम अलग होता है, स्टडी रूम अलग होता है। अब स्कूल का जो वातावरण है वो स्कूल का वातावरण इस प्रकार से क्यों बनाया गया, या आइडियली स्कूल का वातावरण क्या होना चाहिए, जो आजकल है वो अलग बात है। अभी जैसे पहले ये जो आजकल कोएड का जमाना है कि लड़के लड़कियां एक ही स्कूल में जाते हैं, सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो यही हो रहा है स्कूल के अंदर कि एजुकेशन क्या, फिर वो जब डिस्ट्रैक्शन इतना वहां पर, इसलिए पहले जो हमारा गुरुकुल सिस्टम क्या हुआ करता था, मेरे फादर कहते थे कि वो जंगल में वहां पर गुरु के अंडर जहां पर सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस है और प्राकृतिक वातावरण में जहां पर वो भगवान के सबसे क्लोज रह पाएंगे, ऐसे वातावरण में, इसलिए जो गुरुकुल सिस्टम इतना पावरफुल क्यों था। और आजकल आप देखते हो कि स्कूल कॉलेजों में जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि पढ़ाई तो बहुत कम समय कुछ होती है, बाकी तो इतने एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी कुछ एक्टिविटीज वगैरह। और फिर धीरे धीरे होता क्या है कि वो जिस काम के लिए स्कूल में गए वो तो साइड में रह जाता है, और बाकी सारे, इसलिए स्कूल तो छोड़ दीजिए, कॉलेज, नॉर्मल किसी कॉलेज स्टूडेंट को आप पूछे, यहां पर कॉलेज रोड है अपना नासिक में, कई बार हम लोग कॉलेज जब ऑन होता है दिन के समय, मैंने देखा हम लोग कभी कोई प्रोग्राम के लिए गए किसी के घर पर दिन के समय, वो सारे विद्यार्थी रोड पे खड़े, कोई वो है ना क्या कहते हैं उसको, चिट चैटिंग, फिर कोई ना, पूरा कॉलेज। मैंने कहा कि कॉलेज चल रहा है तो ये लोग बाहर सड़क पे क्या कर रहे हैं? बोले असली काम तो यही होता है सुनसान जगहों पर। तो हो क्या रहा है आजकल? एक बार एक गांव का स्कूल था, तो गांव के स्कूल में इंस्पेक्टर चेक के लिए पहुंच गया, तो स्कूल के स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए इंस्पेक्टर पहुंच गया, तो क्लासरूम में ऐसे एक रैंडम क्लासरूम में घुसा, टीचर वगैरह सब, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, सब खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाओ, सब बच्चे खड़े हो। तो इंस्पेक्टर ने पूछा, एक बच्चे को खड़ा है, बताओ देश, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उसने कहा रामलाल। क्या रामलाल? किसने कहा रामलाल कौन है? बोले रामलाल मेरे पिताजी का नाम है। तो तुम्हारे पिताजी प्रधानमंत्री है? बोले नहीं, वो 5 साल से गायब है, मां कहती शायद प्रधानमंत्री बन गए होंगे। वो 5 साल से गायब है पिताजी। तो वो इंस्पेक्टर इतना गुस्से में, वो कहता है कि ये ऐसे बच्चे, फर्जी बच्चे, बोले इसको सस्पेंड करो। तो ये बच्चा कहता है, सर आप मुझे सस्पेंड ही नहीं कर सकते, मैं स्कूल का हूं ही नहीं। बोला मतलब? बोला आप आने वाले थे, मैं तो बकरी चराने बाहर खड़ा हुआ था। और टीचर मास्टर जी ने कहा कि अरे भाई बच्चे कम लग रहे हैं, बेंच खाली है, मेरे को 5 रुपए दिए, बैठ जा भाई इधर। क्या सस्पेंड करोगे, मैं हूं ही नहीं स्कूल का। तो इंस्पेक्टर बोलता है ये फर्जी बच्चा है। तो टीचर को कहता है तुझे मैं सस्पेंड करूंगा। तो टीचर कहता है मैं भी थोड़ी हूं स्कूल का। मतलब तुम भी स्कूल के नहीं हो? बोला नहीं भाई, वो मेरा भाई है यहां का टीचर, वो घासलेट की लाइन में खड़ा हुआ है रेशन कार्ड लेकर, तो उसने कहा कि वो इंस्पेक्टर आने वाले हैं, जल्दी जल्दी मेरा नंबर यहां लगने वाला है, तू जाकर वहां पर अटेंड कर ले इंस्पेक्टर को, मैं भी नहीं हूं यहां। तो ये इंस्पेक्टर और आग बबूला आ रहा है, प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, तो प्रिंसिपल ने पहले 10,000 रुपए निकाल के दे दिए। बोले देखिए साहब, मेरी जो मौसी है ना, वो प्रिंसिपल है, वो कचहरी गई हुई है आज, उसको टाइम नहीं था, वो इंपॉर्टेंट हियरिंग था कोर्ट का, वो वहां कचहरी में, तो उसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए। बोले इंस्पेक्टर आएगा उसको दे देना पहले, कुछ बोलने से पहले, तो मैं नहीं हूं प्रिंसिपल, 10,000 रुपए आपके। तो ये इंस्पेक्टर बोलता है कि बच्चे फर्जी, टीचर यहां फर्जी, यहां प्रिंसिपल फर्जी, वो तो शुक्र मनाओ कि मैं 10,000 में मान गया, असली इंस्पेक्टर आता तो। तो स्कूल का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए ताकि अनुकूल रूप से जो बच्चे हैं वो वहां पर अपनी पढ़ाई कर सके। आजकल तो यहां नासिक के स्कूलों में डिबेट के टॉपिक्स. हाल ही में मुझे एक भक्त बता रहे थे कि नासिक के स्कूलों में डिबेट का टॉपिक क्या है, पॉलिटिशियंस यूनाइट द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री वेर एज गॉड डिवाइड्स. डिबेट का टॉपिक है, सोचो. और इसके ऊपर फिर उनको डिस्कशन कर प्रेजेंट करना है. तो बेसिक मोटिव क्या है कि यही जहन में डाल देना कि भाई एजुकेशन का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उल्टा एजुकेशन हमें यह सिखाता है कि कैसे भगवान की जरूरत नहीं है. सो आइडियली एजुकेशन इन अ स्कूल, द स्कूल शुड गिव प्रॉपर एनवायरमेंट फॉर गुड एजुकेशन. फूड इन अ रेस्टोरेंट, कोई अगर किसी रेस्टोरेंट में गया है तो वो रेस्टोरेंट का जो वातावरण है वो वातावरण लोग किस प्रकार से बनाकर रखते हैं ताकि जो वहां पर आकर बैठकर खाना चाहता है उसको वो वातावरण मिले खाने के लिए. इसलिए कई तो ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर वो लोग टेस्ट किए. मैंने शायद बहुत समय पहले एक वीडियो दिखाया था, ताइवान का एक रेस्टोरेंट है जहां पर कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो मान लो किसी ने सूप ऑर्डर किया तो सूप का बोल होता है, जनरल एक सूप का बोल होता है, तो सूप के बोल के बदले वो जो बोल का शेप है वो टॉयलेट कमोड के शेप में, जो सीट है वो रेस्टोरेंट की वो भी टॉयलेट कमोड, तो वो टॉयलेट रेस्टोरेंट करके उसका नाम है. याद है एक वीडियो दिखाया था. तो कईयों का वो रिएक्शन वहां पर कि हालांकि वो व्यंजन वही है परंतु वो जिसके अंदर दिया गया है खाया नहीं जा रहा था. आप लोगों से कैसे सुनने में भी नहीं आ रहा आप लोगों, ठीक है ना. बंबई में एक व्यक्ति भेलपुरी खाने गया तो उधर लिखा हुआ था भेलपुरी का, वो सब अलग अलग रेट लिस्ट लिखा हुआ था. भेलपुरी 10 रुपया, स्पेशल भेलपुरी 20 रुपया, एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपुरी 30 रुपया, सुपर स्पेशल भेलपुरी 40 रुपया, ऐसे एक करके. फिर लास्ट में था संडे स्पेशल भेलपुरी 100 रुपया. तो एक व्यक्ति, उसने सोचा कि मैं हर दिन आके चेक करता हूं कि क्या एक एक भेलपुरी में डिफरेंस क्या है. तो उसने देखा पूरे हफ्ते जाकर तो सब भेलपुरी तो एक ही टेस्ट की. तो उसने उसको पूछा कि भैया ये तुमने स्पेशल एक्स्ट्रा स्पेशल सबका रेट लगा रखा है, क्या इसका मतलब डिफरेंस क्या है. उसने कहा भैया भेलपुरी तो वही है, पहली भेलपुरी 10 रुपए, फिर तुम दूसरे दिन आओगे जो स्पेशल भेलपुरी है उस पर लिखा हुआ है 20 रुपए, वो ये है कि तुमको धोई हुई चम्मच मिलेगी. अच्छा, तो वो स्पेशल भेलपुरी, हाँ भेलपुरी वही है लेकिन चम्मच धोई हुई मिलेगी. तो फिर वो एक्स्ट्रा स्पेशल, एक्स्ट्रा स्पेशल प्लेट भी धोई हुई मिलेगी. सुपर स्पेशल भेलपुरी मतलब मैं हाथ धोकर सर्व करूंगा. फिर वो पूछता है तो फिर ये संडे स्पेशल क्या है, उस दिन मैं नहाता हूं. मैं जब बंबई में था तो मैंने एक्चुअली देखा, सिग्नल पर हमारी गाड़ी रुकी थी तो वहां पर वो भेलपुरी बना रहा था. तो धोती होती पहना हुआ, हमारे नॉर्थ के कोई थे तो वो इतने बड़े पतीले में वो इमली का पानी पूरा इधर तक उसका हाथ अंदर गया हुआ है. अब ये मत पूछो कि वो हाथ पहले कहां था. और मैं देख रहा हूं वहां पर खड़े लोग और एक बना के मैंने बोला पहले अगर ये 10 मिनट पहले देख लेते कि एक्स्ट्रा स्पेशल क्या डाला है उसके. तो यदि एक एक जो एनवायरमेंट क्रिएट ठीक से नहीं है तो उस वस्तु के अंदर, उस क्रिया के अंदर वो जो उसका इफेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा। और फिर स्पिरिचुअलिटी इन अ टेम्पल, कई लोग एक प्रश्न पूछते हैं ना कि ये मंदिर में आके भक्ति करने की क्या जरूरत है, दिल में भगवान है, दिल से करो। हाँ दिल से करो, परंतु तुम्हारा दिल कहां है पहले वो बताओ। दिल से ही करना है। तो मंदिर के अंदर हम देखेंगे कि जो एनवायरमेंट यहां पर क्रिएट किया गया वही ईंट पत्थर का ये मंदिर बना हुआ है, जिस ईंट पत्थर का कोई बिग बाजार मॉल बना हुआ है या फिर कोई फास्ट स्टार होटल बना हुआ है या कोई डिस्कोथेक बना हुआ है, पब बना हुआ, वही ईंट पत्थर से भी वो भी बना हुआ है। परंतु यहां पर भक्तों ने एक साथ आकर जो एक एनवायरमेंट फेवरेबल क्रिएट किया है, तो यहां पर कितने डिवोटीज का एक्सपीरियंस है कि यहां पर आने के बाद स्वाभाविक रूप से जैसे कि कोई पहली दफा एंट्री करता है, कीर्तन चल रहा है या जप कर रहे हैं, सब डिवोटीज को देख रहा है, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपने आप उसके मुंह से अपने आप हाथ ऊपर जाता है, हरे कृष्णा कृष्णा है ना, हरे हरे
हरे राम 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 हरे।
देखो अभी आप अगर चाह भी नहीं रहे होंगे हाथ ऊपर करना, इतने सारे, ये बगल वाला कर रहा, उसके बगल वाला हाथ ऊपर कर लिया, इधर सब लोग हाथ ऊपर कर लिए और तुम नहीं ऊपर कर, सब तुमको देख रहे हैं, क्या ऊपर करो। हाँ वो एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट हुआ है कि अपने आप हाथ ऊपर जाना है। तो इसलिए मंदिर के अंदर एक, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है कि हम मंदिर आए, मंदिर के एनवायरमेंट में भक्ति करें और इस एनवायरमेंट को हम हमारे घर ले जाएं और फिर घर को मंदिर बनाएं। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने यही किया कि इस प्रकार के मंदिर निर्माण किए इस्कॉन के, जहां पर इतना फेवरेबल एनवायरमेंट भक्ति करने का प्रदान किया कि यहां पर आकर हम पूरा चार्ज होकर फिर इस एनवायरमेंट को हम ले जाकर हमारे परिवार वालों को या परिवार को यहां पर लाके सारा परिवार उस एनवायरमेंट को उठाकर घर को मंदिर। और कितने हमारे डिवोटीज ऐसे हैं कि जो मंदिर में जब पहली दफा आए तो घर का वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल था और फिर धीरे धीरे एक डिवोटी, एक फैमिली का एक मेंबर आने लगा, फिर बाद में वो दूसरे मेंबर को लाया, फिर तीसरा मेंबर, फिर पूरा परिवार, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अरे फिर घर के अंदर चेंजेस होने लगे। फिर वही राधा मदन गोपाल जी यहां पर जो ऑल्टर पर हैं वो फिर वहां उनके घर के ऑल्टर पर सजने लगे, फिर जो यहां पर ऑफरिंग्स भगवान को आरती जैसे होती है वैसे वो घर पर करने लगे। तो ऐसे एक घर में मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंगली बंबई के, तो उन्होंने अपने ऑल्टर पर राधा गोपीनाथ का फोटो फ्रेम लगा रखा बड़ा। तो जब मैं वहां पर दो तीन दिन रुका तो मैंने दूसरे दिन देखा फोटो फ्रेम अलग था। अब जनरली एक ही फोटो फ्रेम लगाते हैं, तो मैंने देखा हर दिन फोटो फ्रेम बदल रहा था। तो मैंने पूछा कि ये कल दूसरा था फोटो फ्रेम, बोला हाँ प्रभु जी हम लोग क्या है डीटीज नहीं रख पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि राधा गोपीनाथ के अलग अलग जो आउटफिट्स का ड्रेसिंग है उसके फोटोज रख रखे हैं हमने, हम फोटोज बदलते रहते हैं। मेरे को बहुत देखो क्या इनोवेटिव तरीके से उन्होंने अपने ऑल्टर में कि दे कांट हैव डीटीज एट दैट मोमेंट एंड दे वॉन्ट टू ड्रेस राधा गोपीनाथ और हैव एवरीडे, जैसे मंदिर में हम लोग हर दिन ड्रेसिंग होते भगवान का दिन में दो बार, वैसे घर पर वो स्टैंडर्ड नहीं हो, परंतु घर पर हम उस प्रकार से अनुकूल वातावरण थोड़ा क्रिएट कर मेन है हमारे भावना। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद ने, हम अगली बार उसकी चर्चा करेंगे, हाउ श्रील प्रभुपाद थ्रू इस्कॉन हैज गिवन अस इंस्ट्रक्शंस एंड एनवायरमेंट। That is the number one glory. Amid so many glories of Prabhupada, number one glory of Prabhupada is that Srila Prabhupada gave not just instructions, khali lecture dekar chale nahi gaye wo. Unhone lecture dekar aur fir ek environment create kiya ki ye jo main suna raha hu Bhagwan ka sandesh, is sandesh ko kaun se environment mein tum palan kar paoge. Wo environment keval bataya nahi, Srila Prabhupada ne कर दिखाया. जय श्री प्रभुपाद की. और इसकी चर्चा हम हमारे अगले वेडनेसडे के सेटिंग में वहां से प्रारंभ करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की.
हरे कृष्णा. वो सूचना इस प्रकार से है, आज के जो बुधवार कार्यक्रम के जो प्रसारण है, पूर्ण प्रसारण